जो अपनी रियाया के मसाइल को हल करे, ऐसा कुछ करें कि मना टले।
खुदाओं की कुर्बानियों को दुगना कर दो। हकीमों ने अभी तक लोगों की फुंसियों के लिए नया मरहम तैयार नहीं किया।
आप बेहतर जानते हैं कि ये सब यहूदियों के खुदा की तौहीन का नतीजा है। बात और बिगड़ने से पहले इसे उन्हें लौटा दीजिए।
नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं।
ऐ जवान बादशाह, क्यों मुखालफत कर रहे हैं?
अच्छा, तुम हो नाश, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्या बनी इसराइल का खौफ जो मेरे दिल में नहीं है, पेशानी पर उसका झूठा धब्बा लगा लूं?
नहीं, हरगिज़ नहीं।
कोई और चारा सोचो नाश।
इजाजत दे दीजिए यह संदूक बनी इसराइल को लौटा दिया जाए।
आखिर कौन से बहाने से?
देख रहे हैं इन बेवकूफ लोगों के दिलों में न जाने कैसा खौफ बैठ गया है। सब जानते हैं कि खौफ आप में नहीं है, लेकिन लोगों को आसूदगी के लिए और इस अहमकाना बहाने को जड़ से खत्म करने के लिए इजाजत दीजिए ये शय अपने मालिकों के पास चली जाए। बहरहाल हमारे सखावतमंद बादशाह की अताओं की बारिश से दुश्मन भी फैज उठा लेते हैं।
ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं ये सिर्फ लोगों की आसाइशों के लिए कबूल कर रहा हूँ।
हाँ, जानता हूँ, इस बार भी दूसरी कई बार की तरह इन पर कर्ज रहा। वक्त आने पर अच्छी तरह बनी इसराइल से सब का सब कर्ज चुका लेंगे।
बनी इसराइल के मुंतखब हुक्मरान के ऐलान का वक्त आ गया है। ये हैं खुदा की जानिब से मुंतखब बनी इसराइल के हुक्मरान तालूत, क्योंकि खुदा वंदे आलम ने इन्हें इल्म और जिस्म में बरतरी बख्शी है।
ये जवान, ये तो अजनबी है और ये तो अभी अभी यहाँ आया है।
हाँ हाँ, ये तो अभी अभी शहर में आया है।
तालूत,
ऐ पैगंबर खुदा, ये कैसे हो सकता है कि ये हमारा हुक्मरान बन सके? ये ना तो मौजूदों में से, ना अंबिया के खानदान से।
इज्जत मखसूस है खुदा वंदे आलम से, वो जिसे चाहे अता करता है।
मगर ये तो अभी जवान और ना तजुर्बेकार है, हमारी कौम में इससे ज्यादा लायक मौजूद हैं।
लियाकत का मलाक कौन बताएगा, आप या खुदा वंदे आलम?
यकीनन खुदा, लेकिन हर चीज का एक उसूल है, हुक्मरानी इतनी आसान तो नहीं।
आखिर हम उस शख्स की कैसे अतात कर सकते हैं जिस पर हमें भरोसा ही नहीं?
लोगों ने खुदा बंदे आलम की बारगाह में इल्तिजा और इताअत करने का अहद किया, और जब उसने दुआओं को मुस्तजाब कर दिया तो क्यों अपने अहद को भुला रहे हो बनी इसराइल?
हमने अपना अहद भुलाया नहीं, लेकिन हम इस चीज को कैसे मान लें?
क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पैगम्बर का कौल काफी नहीं?
काफी तो है पैगम्बर खुदा, लेकिन कोई निशानी होती तो हमें इत्मीनान हासिल हो जाता।
निशानी भी है, खुदावंदे आलम ने मुझ पर इल्हाम किया है। आगाह रहो लोगों, तालूत की हुक्मरानी की निशानी ताबूत अहद की वापसी है।
ताबूत अहद, वही ताबूत जो कनानियों के कब्जे में है
इतने अरसे के बाद।
लेकिन अनकरीब वो ताबूत हमारे।
पता नहीं सारे मुश्किल काम हमसे ही क्यों लिए जाते हैं।
बकवास करने के बजाय होशियार रहो कि तुम्हारा हाथ इस संदूक पर ना लगे, अगर गलती से लग गया तो पल भर में जलकर खाक हो जाओगे।
चलो कोई मसला नहीं, बैत शम्स तक तो आ ही गए।
हाँ, बनी इसराइल की सरहदों तक तो पहुंच ही गए, चलो जरा आराम कर लेते हैं।
ऐसा करते हैं, बैलगाड़ी को नहर के पार छोड़कर वापस चलते हैं। अजीब बात है, वो कौन लोग हैं जो सामने खड़े हैं?
लगता है ये लोग यहूदी हैं जो इंतजार में खड़े हैं।
लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि ताबूत हम लेकर आ रहे हैं?
मैं तो जा रहा हूँ, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। खुद आएंगे और खुद आके ले जाएंगे।
پیغمبر خدا کیا ہوا، تابوت عہد کب آئے گا؟
کیا خدائی وعدے پر تمہیں کوئی شک ہے، یا کیا اس کے حکم کو تم بدلنا چاہتے ہو؟
نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟
پیغمبر خدا، پیغمبر خدا، تابوت عہد، تابوت عہد خدا رہا ہے،
تابوت عہد۔
اتنا خوبصورت ہے
تابوت عہد،
ارے وہ لوگ جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟
ان کی تلاش میں نہ رہو، وہ تابوت کو لانے کے لیے خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ لو وہ نشانی جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، تابوت عہد۔
خدا کی قسم یہ ایک عظیم اور خدائی نشانی ہے جواں سال تالوت کی حکمرانی کے لیے۔
یہ ہے تالوت، مومنین بنی اسرائیل کے منتخب حکمران۔
تالوت زندہ باد، بنی اسرائیل کے نئے حکمران۔
تالوت زندہ باد، مبارک ہو زندہ باد،
سلام ہو۔
تالوت زندہ باد، بنی اسرائیل کے نئے حکمران،
مبارک ہو۔
تالوت زندہ باد، تالوت زندہ باد،
بنی اسرائیل کے نئے حکمران،
حکمران
پر تالوت
زندہ باد، تالوت زندہ باد،
سلام ہو۔
خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے بندو کی خدمت گزاری کے لیے مجھے چنا۔
3 سال بعد، سن 1035 قبل مسیح،
آخر کیا کام ہے نعاش، بتاتے کیوں نہیں؟
اگر بادشاہ کو یاد ہو تو میں نے خاص موقع پر یہودیوں کے سروں کو کچلنے کا وعدہ دیا تھا۔
ہاں یاد ہے،
اور اب وہ موقع آ چکا ہے۔
میں نے سنا ہے اپنے لیے بادشاہ بنا رکھا ہے، صحیح ہے نا؟
ہاں، ایک دیہاتی ہے، میں بھی اس لیے موقع کو مناسب سمجھ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ایک بڑی سلطنت کے چکر میں ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک طاقت بن جائیں ہمیں ان کا صفایا کر دینا چاہیے۔
ابھی تو وہ کمزور ہیں، لیکن جب متحد ہو جائیں گے پھر ان کا مقابلہ ناممکن ہوگا۔
حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی وہ متحد ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی احتیاط عقل کی نشانی ہے۔
ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو نحاش،
ہمارے خدا زیادہ ہیں اور زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ حکم دیتا ہوں کہ ان کے قدموں پر اسیروں کو قربان کیا جائے۔ اس بار کامیابی ہماری ہے۔
تمہارا حربہ کیا ہے؟
ہمیں ان کے بادشاہ کو ایک ناگہانی جنگ پر اکسانا ہوگا، اور جب وہ جنگ پر آ گیا تو ہم انہیں ختم کر دیں گے۔
اور اگر نہیں آیا؟
بنی اسرائیل بہت ہی سرکش قوم ہے، نہیں آئے گا تو خود اس کے قوم والے اسے نابود کر دیں گے۔ दोनों हाल में जीत हमारी है।
हर बात तो अच्छा है, लेकिन क्या उनकी ताकत का तुमने सही से अंदाजा लगा लिया है?
हाँ, उनके दरमियान मेरे बहुत सारे जासूस मौजूद हैं। ये लोग मेरे गुलामों में से हैं।
हम अजीम नाश और कनान के बादशाह के वफादारों में से हैं।
हम आपके वफादार नौकरों में से हैं हजूर।
अच्छा तो शारून, जो कुछ जानते हो शाह को मुत्तला करो।
बादशाह की उम्र दराज हो, बनी इसराइल के कुछ लोगों ने समूइल के कहने पर, जो खुद को पैगंबर कहता है, तालूत को अपना हाकिम बना लिया है। लेकिन बनी इसराइल के अक्सर लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसके पास ना तो सिपाही है और ना कोई जंगी साजो सामान। उसके आसपास उसके रिश्तेदार और अपने कुछ दोस्त हैं या कुछ अहमद लोग। बादशाह मुतमईन रहे, जंग के वक्त तालूत बिल्कुल अकेला हो जाएगा।
अलबत्ता मैंने बादशाह की जानिब से शारून से ये वादा कर लिया है कि तालूत को खत्म करने के बाद बनी इसराइल की हुक्मरानी को हम उसे सुपुर्द कर देंगे।
मैं, मेरे बेटे और साथी आपकी हर तरह खिदमत के लिए तैयार हैं। इजाजत दीजिए।
मजेदार आदमी है, वही है जिसकी हमें तलाश थी।
इस आदमी से ज्यादा खाइन मैंने पूरे बनी इसराइल में नहीं पाया।
आगे चलकर हमारे लिए खतरा तो नहीं होगा?
नहीं, ये कमीना तो है लेकिन बहुत मोहताज भी, और देखना ये भी दरबार के कुत्तों में से एक होगा।
बाबा, कनानियों के दरबार से निकलने के बाद बार बार मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। क्या मैं पूछूं?
हाँ पूछो।
आप इतने बड़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं, आपने कैसे गवारा किया उनके पैर चूम लिए?
ये तुम्हारे गोबर भरे दिमाग में क्या चल रहा है? हमेशा तुमसे कहा है कि सिर्फ अपने मकसद की जानिब अपनी आंखों को गड़ाए रखो। तुम्हारा मकसद क्या है?
कौम बनी इसराइल की सरदारी। क्या सरदारी जलील होने से वजूद में आती है?
सरदारी जिससे भी वजूद में आए फर्क नहीं पड़ता, समझे? बस आम ये कि वजूद में आए। आज हम कमजोर हैं, लिहाजा उस जवान के पैर भी चूम रहे हैं। कल जब हम ताकत में आ जाएंगे तो उस जैसे हजारों जवानों को अपने पैर चूमने पर मजबूर कर देंगे। बेटा, पहले हमें ताकत हासिल करनी होगी। कभी गौर किया है कि मैंने तुम्हारी गर्दन में क्या हमाइल किया है? इसमें कीमती पत्थर के बजाय मैंने खास दरख्त का दाना डाला है। जानते हो वो कौन सा दरख्त है?
नहीं बाबा, मुझे नहीं मालूम।
ये वो दरख्त है जो सिर्फ एक जगह उगता है, सिर्फ और सिर्फ कोहे सय्यून की संगलाक पहाड़ियों। उस पेड़ का दाना तौलानी मुद्दत तक, हत्ता के 300 साल या 500 साल तक जमीन में पड़ा रहता है और मुनासिब वक्त का इंतजार करता रहता है, और जब पानी मिलता है, चाहे साफ हो या गंदा, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिस कदर वो ऊपर बढ़ता है उससे कई गुना वो जमीन में बढ़ता है, और जब वो जमीन के ऊपर एक हाथ के बराबर होता तो जमीन के अंदर उसकी जड़ें इस कदर फैल जाती हैं जो किसी पुराने दरख्त की भी नहीं होती, और जब वो दरख्त तनुमंद हो जाता है तो आसमान से चाहे आग बरसे वो अपनी जगह से नहीं हिलता।
बहुत अच्छी बात बताई आपने आज।
यही एक सबक है जो तुम जैसे आदमी की जिंदगी भर की दुनिया संवारने के लिए काफी है। अब चलो शेरो, चलते हैं। आज तो ताबूत अहद और समोइल के पैरों को भी चूमना है।
बनी इसराइल के हुक्मरान तालूत पर सलाम।
ओह, आप हैं पैगंबर खुदा, आइए आइए। میں نے تمہارے گہرے افکار کے سلسلے توڑ دیے۔ کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں جن میں میرے افکار الجھے ہوئے ہیں۔
کون سے مسائل؟
سب سے پہلا مسئلہ سپاہیوں کا ہے جو کہ بنی اسرائیل کی سرزمین اور اس کے امن و سکون کی حفاظت کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ اتنا مال و اسباب فراہم کیا جائے جس سے شہروں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔
سپاہ تیار کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں جوانوں کی کمی نہیں؟
جیسا کہ پیغمبر خدا آپ کو پتا ہے، کنانیوں نے کبھی بھی اجازت نہ دی کہ ہم اسلحہ بنانے کا فن سیکھ سکیں، نہ تجربہ کار نوجوانوں کو لشکر، وہ بھی بغیر جنگی ساز و سامان کے۔
یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں، لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہوگا۔
اسحاق، ناتانیہ اور اپنے دوست ابنیر کو فوج میں آنے والے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے روانہ کیا ہے تاکہ آ کر وہ جنگی تربیت حاصل کریں، اور اسرائیل کے مختلف علاقوں سے جنگی ماہرین کو بھی بلایا ہے جو ان کی تربیت کا کام شروع کریں گے۔
اچھی بات ہے، اس عظیم افرادی قوت سے شہری آبادیوں کی فلاحی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔
اچھی ترکیب ہے، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، جب آپ آتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے اور حل ہونے لگتی ہے۔
خدا کی یاد وہ چراغ ہے جس سے مشکلات کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔
شہر یاویش، کنان کی سردوں سے ملا ہوا شہر۔
کنانیوں کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تمام جنگی ساز و سامان سے لیس ہماری طرف بڑی چلی آ رہی ہے۔ وہ یاویش میں قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔
اب ہم کیا کریں گے، کیسے بچیں گے؟
ہم میں سے ایک وفد قیمتی ہدیوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو۔
کیوں نہ تالوت کے دارالحکومت شیرو کی جانب ایک قاصد بھیجا جائے اور ان سے مدد طلب کی جائے۔
کچھ بھی ہو، وہ ہمارے اور تمام بنی اسرائیل کے حکمران ہیں۔
وہ بنی اسرائیل کے حکمران ضرور ہیں، لیکن ایسے دشمن سے مقابلے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ مجبوراً ہمیں یہ شہر ان کو سونپنا ہی پڑے گا۔
صحیح کہہ رہے ہو، تالوت اگر واقعی لائق اور اچھا حکمران ہے تو وہ ہمیں آزاد کروا دے گا۔
فی الحال کسی بھی طریقے سے ہمیں کنانیوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا۔
جو کچھ میں آرام سے حاصل کر سکتا ہوں اس کا احسان مجھ پر لاد رہے ہو، اور اوپر سے مجھ پر اپنا حکم جھاڑ رہے ہو۔
ہماری زبانیں کٹ جائیں اگر ہم ایسی غلطی کریں۔ ہم پر حملہ نہ کیجیے، ہمیں امان دیجیے، ہم اپنے شہر خود آپ کو دے دیں گے اور آپ کی بندگی کریں گے۔
اگر تم میرے بندے ہو تو کیوں مدتوں سے اپنا خراج کنان کے بادشاہ کو ادا نہیں کرتے؟ اب خاموش کیوں ہو گئے؟ کیوں نہیں کہتے تمہارے پاس خود بادشاہ ہے؟ کھوکھلے خیالات کو اپنے سروں میں پکا رہے ہو۔ سمجھتے ہو کہ سویل تمہارا پیغمبر ہے، تالوت تمہارا بادشاہ ہے، لیکن ابھی وہ کہاں ہے؟ میں تمہیں یہی یاد دلانے آیا ہوں کہ تمہارا حاکم کون ہے اور تم کس کے بندے ہو اور کیوں۔
ہمیں یہ معلوم ہے۔
معلوم ہے لیکن بھول گئے تھے، اور آئندہ بھی بھول سکتے ہو، مگر میں تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ تم کیا تمہارے بچے بلکہ تمہاری نسلیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ لیکن تمہیں جاؤ معاف کیا میں نے۔
عظیم نحاش کی بزرگی اور بڑائی کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔
ہاں، اب ہرگز نہیں بھولو گے، لیکن میرے غضب کو۔ پانچ دن کے بعد میں یاویش آ رہا ہوں۔ لوگوں کا قتل عام تو نہیں کروں گا، لیکن تمام یاویش کے لوگوں کی بائیں آنکھ نکال لوں گا، مرد عورت جوان بوڑھے بچے سب، تاکہ نسلوں تک بنی اسرائیل میں کنانیوں کی سرداری کی نشانیاں اور دہشت باقی رہے۔
اور ہدیہ لے کر جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کو رحم آ جائے۔ इनसे जंग क्यों ना करें, कम से कम इज्जत के साथ तो मरेंगे। बकवास मत करो, कम से कम औरतों और बच्चों के बारे में तो सोचो।
ये कैसे हो सकता है कि वो बच्चों पर भी रहम ना करें, मेरी दोनों आंखें निकाल ले लेकिन मेरे बच्चों को तो कम से कम छोड़ दे।
वो रहम नहीं करेंगे, मैंने उनकी सिपहसालार की आंखों में देखा है।
ओ खुदाया, तू ही रहम कर हमारे हाल पर।
उनके आने में अभी वक्त है, मैं तो कहता हूँ पहाड़ों में छुप जाते हैं। मेरा ख्याल है ठीक कह रहा है, हम भाग जाएं तो ही बेहतर होगा। कनानियों ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा है, हम इतनी बड़ी तादाद के साथ कहाँ भाग सकते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए?
कुछ नौजवान और दिलेर तालूत की जानिब जाएं और उन्हें हम पर आने वाली आफत के बारे में आगाह करें, शायद वो हमारी मदद कर सकें। और बाकी लोग जो भागना चाहते हैं वो भाग लें अपनी जान बचाकर इस शहर से।
मैं अपने दोस्तों के साथ तालूत की जानिब जाना चाहता हूँ।
क्या बकवास कर रहे हो, तमाम रास्तों को बंद कर रखा है, दुश्मन भी खून का प्यासा है।
और कोई रास्ता भी तो नहीं, तालूत ही हमारी आखिरी उम्मीद है।
लेकिन वो तुम्हें मार डालेंगे।
लेकिन ये उससे तो बेहतर है ना कि मैं यहाँ रुकूं और तुम्हें एक आंख से अंधा होते हुए देखूं, ये नामुमकिन है।
जाओ, इत्मीनान से जाओ, शहर की सबसे बड़ी मीनारे पर जाकर तुम्हारी राहों में आंखें बिछा रखूंगी। यकीन करो, तुम्हारे लौटने तक दुश्मन मुझ तक नहीं पहुंच सकता।
जो खुदा की मर्जी है वही होगा, तुम देख लेना।
खुदा तुम्हारा हाफिज़ और नासिर।
हमें उनका मिलकर मुकाबला करना चाहिए।
हम मिलकर खत्म कर देंगे।
खुदा हमारे साथ है।
चुप हो जाओ, खामोश खामोश। इस तरह शोर शराबा और अफरा तफरी करके दुश्मन से जंग नहीं लड़ी जाती।
सरदार नतानिया, आप हमें खत्म करके रख देंगे। चलो बहुत हो गया, जल्दी से सफ़े बनाओ और शोर शराबा बंद करो। आखिर क्या अफरा तफरी मचाई है तुम लोगों ने?
जो हुक्म नाराज ना हो सरदार साहब, हम आपके ताबे हैं। जल्दी करो, सरदारों के हुक्म के मुताबिक जल्दी जल्दी सफ़े बनाओ, जल्दी करो,
जल्दी करो। फौजियों को मुनज़्ज़म करो, हुक्मरान तालूत बस आने ही वाले हैं।
ये अबनीर किस तरह बात करता है हमसे, क्या समझता है अपने आप को? लगता है हमारा सरदार है।
शायद तालूत ने उसको ये मुकाम दिया हो।
लेकिन इसको इस तरह बात करनी नहीं चाहिए।
बस करो इसहाक, बहुत हो गया, हमें उनकी अतात करनी है बस।
बनी इसराइल का लश्कर खिदमत के लिए तैयार है। दरूद व सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान तालूत पर। अर्ज है कि हमने सिपाहियों को जंगी तरबियत देके तीन ग्रोहों में बांट दिया है, वो सब खिदमत के लिए तैयार है।
एक दिन यही लोग बनी इसराइल की फौज के सबसे कवी अफराद होंगे।
हे, मैं शहर याविश से आया हूँ।
बनी इसराइल के बादशाह का इकबाल बुलंद हो।
सलाम हो तुम पर, उठो और अपना पैगाम सुनाओ।
मैं आपकी हुकूमत के एक शहर शहर याविश से आया हूँ। ये शहर आपकी हुकूमत में आता है जा पना।
खैर मकदम है तुम्हारा, पैगाम क्या है?
कन्नानियों की फौज ने हमारे शहर याविश को चारों तरफ से घेर रखा है। जी हाँ, हमारी आवाम बहुत बड़े खतरे में फंसी हुई है और नाहश चाहता है कि जिल्लत की निशानी के तौर पर बनी इसराइल के लोगों की एक एक आंख निकाल ली जाए। उसने अपने बड़े बुत ताजून की कसम खाई है कि वो उन बच्चों की भी एक एक आंख निकाल लेगा जो अभी अपनी माओ के पेट में है।
ए काफिरे गुस्ताख। खुदा की कसम, तालूत ऐसा कभी नहीं होने देगा। اسحاق جاؤ اور چند آزمودہ سپاہیوں کو لے کر میرے پاس آؤ.
جو حکم.
ناتانیہ دو بڑی گائے لے کر آؤ.
جو حکم. ہمیں جلد بازی میں کوئی غیر سنجیدہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے.
جلد بازی نہیں کر رہا ہوں.
آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یاویش کے عوام کی مشکل دور ہو جائے گی؟
انہیں دراصل مجھ سے مطلب ہے. اگر میری روانگی کی خبر ان تک پہنچی تو یقیناً انتظار کریں گے.
سلام سردار نہاش, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. کل رات ہم نے یاویش کے چند فرار ہوتے ہوئے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. وہ لوگ یاویش کے لوگوں کی مدد کا پیغام لے کر تالوت کی طرف شہر شیلو کے جانب جا رہے تھے اور ہم نے انہیں پکڑ لیا. لیکن افسوس, اندھیرے میں ایک شخص فرار ہو گیا.
خداؤں کا منشا یہی تھا, بقیہ کو مار ڈالو. اچھا ہی ہوا جو بھاگ گیا, بہتر ہے تالوت تک پیغام پہنچ جائے.
پیغام پہنچ جائے, آخر کیا وجہ ہے؟
میں چاہتا ہوں تالوت خود چل کر اپنی قتل گاہ تک آئے اور ہم بنی اسرائیل کی مزہ کا خیز حکومت کا سرے سے خاتمہ کر دیں.
لیکن سردار, اگر وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے تو کیا ہوگا؟
اس کے پاس ایسا بڑا لشکر ہے ہی نہیں, اور نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ بنی اسرائیل کے دوسرے شہروں کو بھی متحد کر سکے, کیونکہ وہ ہمارے خوف کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانیں گے, اور اس طرح بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب سمیل کیا کرتا ہے.